साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ नागपुर से सेवानिवृत्त शिक्षक एवं आदर्श कृषक चंद्रकांत जी उलखड़े रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार गुरु जी।
नमस्कार। नमस्कार जी।
गुरु जी, जैसा कि संपूर्ण विश्व के सामने आज एक बड़ी विडम्बना सामने है, और वह विडम्बना है जलवायु परिवर्तन की। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है?
हाँ, ये तो एक नैसर्गिक आपत्ति समझ लीजिए, क्योंकि ये आज का जो वातावरण है आप देख रहे होंगे, इस दिनों में कभी ठंडी नहीं रहती, ठंडी है। बारिश जून में शुरू हो जाती, 7 जून ने तारीख वो पहले होती थी बारिश आने की, तो जुलाई के आखिरी और अगस्त के महीने में वो शुरुआत हो जाती है। कभी भी इन्हें निसर्ग जो है एक किसानों के लिए, मुझे तो भी लगता है कि निसर्ग थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। और अभी सवाल आता है जलवायु। जलवायु के दृष्टि से भी आप देखेंगे, आप भी एक किसान हो, खेती में जो भी कुछ फसल बोते हैं, कितना भी तुम खाद डालो, फिर भी उसका जो फायदा, जिस गुना से किसानों को उत्पादन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज हम संपूर्णतः नैसर्गिक खेती पर तो है निर्भर, लेकिन ये जो खाद, ये जो इंसेक्टिसाइड दवाइयां जो इस्तेमाल करते हैं, उसका भी ज्यादा असर खेती पर हो रहा है। दूसरी बात, नदियां जो है, जो पानी का बहाव रहता था, रेतियां रहती थी, जिसके कारण पानी जो है नदियों के बीच में, ऊपर भलाई नहीं दिखाई दिया लेकिन रेती के बीच में से वो रहता था। आज क्या हो रहा है, नदियां जो है पूरी खोदी गई है, पानी जो है आया कि वो सीधा बह के चला जाता है, तो पानी की, जिसके कारण जो जमीन के अंदर में पानी रहना चाहिए वो नहीं है। सिंचाई की जो सुविधा है, भलाई कुएं है, लेकिन अभी एक महीने के बाद में कुएं सूख जाएंगे, जिसके कारण ये जो वातावरण जो है ना, किसानों के लिए, पर्टिकुलरली खेती के लिए, वो कोई ऐसा लाभदायक नहीं हो रहा है। अब उसके लिए भी हम किसी भी, कोई सरकार, कोई भी रहे, सरकार को यदि दोष देंगे तो वो उचित नहीं होगा। ये आपदा हम लोगों ने खुद होकर पाली है, बढ़ाई है। तीसरी एक बात ऐसी है कि पेड़ पौधे जो एक तो हमारे हवा शुद्ध कर देती है, पानी के लिए, मनुष्य के लिए, सभी के लिए वो जो बहुत सारे फायदेमंद है, लेकिन हम ही लोग पेड़ों को काट कर फेंक देते, हवा में प्रदूषण बढ़ेगा नहीं तो क्या, हवा शुद्ध नहीं रहेगी। हवा में शुद्धता चाहिए, पेड़ चाहिए, पानी का रिसाव होना चाहिए जमीन के अंदर में। कितनी भी तुम कुएं, बोरवेल कितने भी गहरे करोगे, वो और नीचे जाएगा, पानी का स्तर बढ़ने वाला नहीं है। अब उसके लिए तुम बड़े बड़े डैम बनाओगे, डैम कुछ ही रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी नदियां, हमारे पेड़ पौधे, ये जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक ये प्रदूषणता जो है वो और बढ़ते जाएंगी। पहले तो हम दिल्ली बहुत प्रदूषित है ऐसा कहते थे, अभी तो मुंबई और बाकी के शहर भी आ रहे। तीसरी, चौथी बात एक है कि गाड़ियों का जो इस्तेमाल करना, पेट्रोल डीजल, डीजल का, केरोसिन का गाड़ियों में जो इस्तेमाल होता है, उसका जो धुआं निकलता है, उसके कारण भी हमारा जो वातावरण है ना वो बहुत प्रदूषित होता है। आजकल लोग तो पैदल चलना भी नहीं जानते, वो उनको शर्म आती है। पहले तो खेत में जाना, खेत में रहना, खेती में पूरा समय देना, ये सभी किसान लोग करते थे। आज आप देखते होंगे खेती के बजाय वो होटलों में, पान ठेले पर, किसी गुत्ते पर, यह आपको ज्यादा संख्या दिखाई देती है। प्रदूषण तक कैसी नहीं बढ़ेंगे जी, यही एक ऐसा कारण है कि जब तक हम पानी रोकेंगे नहीं, हर खेत का पानी जो बहकर जाता है, उसमें जो खाद डालते हैं वो भी बहकर जाता है, हाँ, तो पानी को रोकना, नदियों का सुरक्षित रखना, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना, ये जब तक होगा नहीं, केवल वो नाटक करना, इतने पौधे लगाए हैं, उतने पेड़ लगाए हैं, लगाए हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर में कितने बचे हैं? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? हैं? तो ये जब तक, और ये प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक किसान का कर्तव्य है। किसान दिन ब दिन खेती को भूलते जा रहा है, सारी चीजें हमको बिल्कुल अनायसे, यानी जिसको बोलेंगे सहजता से प्राप्त होना चाहिए, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, ऐसा जो सोचते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कितने स्प्रे करते हैं वो, स्प्रे स्प्रे स्प्रे, जिसके कारण मनुष्य की जो आयु जो है ना, उनकी जो बीमारियां है, पेड़ पौधों के बजाय आदमियों के ऊपर बीमारियां बढ़ती जा रही, क्योंकि पूरा वातावरण जो है वो सब प्रदूषित हो गया है, और उसके लिए दूसरे कोई भी जिम्मेदार नहीं, हम लोग जिम्मेदार है।
गुरु जी
बोलिए,
जैसा कि आपने जलवायु परिवर्तन क्या है तथा इसके महत्वपूर्ण कारकों पर आपने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से जोड़कर कौन सी योजना संचालित हो रही है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है।
देखिए, आपने जो ये जो सवाल किया है ना, ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ किसानों को कितना हो रहा है। पहली बात यह है कि खेती करने के लिए किसानों को जो मजदूर लगते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उन मजदूरों के लिए एक अलग प्रकार की योजनाएं, फुकट का अनाज, ये जो योजना ठीक है, गरीबी हटाओ यदि बोलते हैं, हम मानते हैं गरीबी दूर करने के लिए कुछ योजनाएं चाहिए, लेकिन काम दो, काम करो, उसका जो मुआवजा है उनको जो मिलना चाहिए वो लो, ये फुकट की चीजें जो है ना, ये सारी पहले बंद हो जाना चाहिए सभी को, चाहे भी हो। दूसरी बात, ये जो सब्सिडी के नाम से सब्सिडियां दी जाती है ना, ये तो सभी जानते हैं, किसानों को सब्सिडियां दे रही है। हम जब और कई बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास बैठते हैं ना चर्चा करने के लिए, वो कहते हैं किसानों को कितनी योजनाएं हैं, सरकार ने कितनी दी है। मैं उनको बोलता हूँ, भाई आप जब किसान बनोगे और देखोगे कि ये योजना कैसी है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ पातुरकर जी, ये योजना के इस अंतर्गत आप भी जाके छिंदवाड़ा में जरा इंक्वायरी करो, जो किसानों को पाइप सब्सिडी में दी जाते हैं 300 के ऊपर उसकी कीमत वहां है, जहां सब्सिडी मिलती है वहां, और हम यदि मार्केट में जाएंगे वही पाइप 260 में मिलता है। अब बताइए, सब्सिडी नाम की है, ये जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये इतना जो जो सब्सिडी के रूप में दिए जाते। और एक मैं बात, बहुत अच्छा इसमें आपने बताया कि किसानों के लिए या मजदूरों के लिए जो सब्सिडी है या जो कुछ देते हैं, हर ग्राम पंचायत में आप सरकार ने जो मजदूरी के रूप में काम दिया है, काम के बारे में आप देखोगे या किसी भी ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में जाके आपको देखोगे कि आपने कौन सा काम किया, जाके देखोगे तो आपको काम नहीं दिखेगा। क्या करते उनको बैठे बैठे ही तुम मजदूरी दे रहे हो। काम काम होना चाहिए। हम पिछड़े इसीलिए है क्योंकि हम अपनी जो ईमानदारी है ये ईमानदारी भूलते जा रहे, बाजू में रख दी है। हर छोटे लेवल से लेकर तो बड़े लेवल तक सब बेईमानी भरी हुई है, और ये बेईमानी जब तक हमारे यहाँ से, हमारे देश में, हमारे राज्य से, हमारे गांव से नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तब तक चाहे कितनी भी सरकार योजनाएं बनाए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लोगों के लिए, ये लाभदायक नहीं होगी। लोगों में वही भावना रहेगी, सरकार तो दे रही है, चलो इस्तेमाल कर लो, जो भी होता है वो अपना क्या जाता है। अरे भाई हम लोग टैक्स देते हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं, पैसा तो तुम्हारा ही है, लेकिन अच्छे काम के लिए होना चाहिए। तो ये सारी, मैं तो भी कहता हूँ ये किसान के नाते, सारी सब्सिडियाँ, चाहे खाद की सब्सिडी हो, कुछ भी हो, और जो कारखाना खाद बनाता है वहाँ एक अच्छा ईमानदार अफसर होना चाहिए। बताओ तुम्हारा खर्चा कितना आता है, तुम कितने में उसमें MRP लिखते हो, 30-30, 40-40% वो कमीशन देते हैं कंपनियां बेचने वालों को, कितना खर्चा आप देखते हैं, ये वो भी कम हो गया तो ऑटोमेटिक सब्सिडी देने का सवाल ही नहीं आता ना। तो ये जो योजनाएं हैं, मेरे तो भी ख्याल से, मेरा जो अध्ययन है, मेरा जो अभ्यास है और मैं जो देखता हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि ये योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, वो किसी काम की नहीं है। आखिर में लोगों को एक ऐश करने के दृष्टि से रखना ये उचित नहीं है। बेकारी जो हम कहते हैं सब नाम की है, कोई काम करने के लिए आगे नहीं जा रहा है इन योजनाओं के कारण। और इसीलिए यह तो एक मेरा है सभी के लिए, मैं विनंती करूंगा, अर्ज करूंगा, सभी किसानों को कहूंगा, आप सब्सिडी के पीछे या गवर्नमेंट की जो, हाँ किसानों को कुआ चाहिए दो ना, जिसको आवश्यकता है उसको कुएं नहीं देते, जिसको बोर चाहिए उसको बोर नहीं देते, तो अपना कोई पहचान का है, अपना कोई दोस्त है उसको तुम देते हो, क्या सचमुच वो कुएं बनाते, क्या सचमुच वो तालाब बना रहे हैं पानी का वो साठा करने की दृष्टि से, नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तो, मैंने भी योजना ली है, मैंने बोर की योजना ली, मेरा बोर चल रहा है, मैंने तालाब के लिए लिया, सरकार ने एक तालाब के लिए दिया, मैंने दो तालाब बनाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि पानी जब तक रोकेगे नहीं, पूछे करोगे नहीं, तब तक कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए जरा सभी लोग, सभी जनता जागरूक होगी तो हमारा देश सचमुच सुजलाम सुफलाम बन जाएगा।
गुरुजी
जी,
जैसा कि आप एक सेवानिवृत्त शिक्षक होने के अलावा एक आदर्श कृषक भी हो, और हमने भी देखा है कि आपने नागपुर से आकर छिंदवाड़ा जिले के रामाकोना शहर में एक बंजर खेती को उपजाई खेती में परिवर्तित किया है, और उसमें भी आपने छोटे छोटे एक दो तालाब बनाए थे
जी।
तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है
जी।
और जयंती के अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज के दिन किसान भाइयों को क्या संदेश दोगे ताकि वो एक अच्छी तरह से खेती कर सके।
एक तो मैं शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, ये तो आवाज रहेगी, लेकिन सचमुच शिवाजी महाराज का यदि सपना, हमारा देश और कहीं आगे जाए, यह यदि सभी लोग जानते होंगे, तो मैं ये कहूंगा, बंजर, आपने जो कहा है कि बंजर जमीन को आपने ऐसा बनाया है, कर सकते नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए। जो जहां काम करना है सरकार ने उसके तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए, उसको करने के लिए लगाना चाहिए। आज हमारे देश में पंजाब की खेती बहुत अच्छी क्यों है? पंजाब का कोई भी सचिव, कोई भी ग्राम सेवक, कोई भी कृषि अधिकारी ऑफिस में बैठकर ऑर्डर या कोई पेपर काले पीले नहीं करता, उसको हर किसान के खेत में जाना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है, उसके क्या उसके फसल देखना पड़ता है, उसको क्या आवश्यकता है वो बताना पड़ता है। हमारे यहाँ तो किसान उनके पास जाने के बाद में वो ऐसा कैसा हो गया ऐसा सवाल पूछते। आप पटवारी लोग देखते हैं, पटवारी पहले हर गांव में पटवारी रहता था, पटवारी हर पूरे क्षेत्र में वो जाकर इंक्वायरी और सारी जानकारी जो है तहसीलदार साहब को देते थे। आज किसानों को चक्कर लगाने पड़ गए, भलाई इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, ये कुछ किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर का कोई कर्मचारी हो, प्रत्येक ने प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि सचमुच शिवाजी महाराज का नाम और आगे अपने देश में रोशन करना है तो प्रामाणिकता, इच्छा शक्ति और जिद, ये यदि सभी ने आत्मसात कर ली तो मुझे तो भी लगता है कि पूरा सपना और एक हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव सुजलाम सुफलाम हुए बिना नहीं रहेगा।
गुरु जी, एक आपसे अंतिम प्रश्न
जी,
कि आप सेवानिवृत्त शिक्षक थे और आपके विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके और वर्तमान में गृह मंत्री भी है, तो आप महाराष्ट्र सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वे जलवायु परिवर्तन पर काम करें?
मैं तो बहुत मुझे अभिमान है देवेंद्र जी फडणवीस पर कि मेरे वो एक आदर्श विद्यार्थी थे और आज भी आदर्श नेता के रूप में वो काम कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी, पूरे देश को जानकारी है कि उन्होंने ये जल संरक्षण, जहां पानी नहीं मिलता था लोगों को, वहां उन्होंने पूरे क्षेत्र में जल सुविधा निर्माण करने की योजना बनाई और करके दिया वहां। लेकिन उनका अब जो विरोधक जो है उन्होंने उनके ऊपर ही लांछन लगाया कि ये सब गलत किया है। जल को जब तक हम खेत का जल खेत में रोकेंगे नहीं, तो उस दृष्टि से सभी तरफ कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरी बात, आपने उनका नाम लिया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। मैंने उनको ये लिख कर दिया, उनको कहा कि किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, किसानों को अच्छा खाद चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, बिजली जो है तुम रात को बिजली दोगे कि किसान क्या मरेगा क्या वो खेत में? हाँ, मैंने भी किए, रात को 11-12 बजे तक मेरे वो रामाकोना के खेत में मैंने सिंचाई की है। झूठ नहीं बोलता मैं, ये सच्चाई है और ईमानदारी। आप तो कहते ही है कि बंजर जमीन को करने का कोशिश किया, हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। और पांचवी चीज है मार्केट। पाश्चिमात्य राष्ट्र आगे क्यों है खेती के बारे में? उनको किसानों को मार्केट में जाने की और दलालों के माध्यम से बेचने की कोई आवश्यकता नहीं। किसान उनके खेत के बाजू में ही रोड अच्छे है, किसान अपने खेत का माल निकाल कर रोड पर आ जाता है लेके, उधर से गाड़ी आती है, गाड़ी में माल भरा जाता है और वो लेके जाते हैं, वही गिनती होती है। जहां किसान माल रखता है वही गिनती होती है, वो लेके जाते हैं और शाम को ही उनके खाते में उनके माल के पैसे जो है जमा हो जाते हैं। ये है सेवा। यदि सरकार को सेवा करनी है इस प्रकार की सेवा करना चाहिए, नहीं तो बाकी जो है ये तो हमारे लोग सरकार में है, वो किसान जो है वही कि वहां है, और उनको मालूम नहीं है कि समस्या क्या है करके, उनको मालूम है लेकिन सारे के सारे अपना जो है अपना भरने का कोशिश करते हैं, बाकी का भाड़ में जा। ये मैं आखिरी का शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि दिल के अंदर में वो जो है दर्द, वो दर्द मैंने उस एक शब्द में इस्तेमाल किया। सभी किसान भाई मुझे माफ कर देंगे, सभी लोग माफ कर देंगे, नेता लोग माफ कर देंगे, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरी जो अंदर की अंतरात्मा है उसको उजागर करने का आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आपने मोबाइल वाणी के मंच से रूबरू होकर किसानों की दशा और दिशा साथ ही जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखी। खबर सुनने के लिए महाराष्ट्र मोबाइल वाणी का निःशुल्क नंबर 9250500 444 पर मिस कॉल कर आप सभी लोग सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।